سے دوہرا دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک مستقل ایک مضمون ہے اور وہ جو ہے وہ بیچ میں سے اگر ہم شروع کریں گے تو وہ اس طرح سے تعلق نہیں جڑتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا سلسلہ. پہلی چیز یہ سمجھی گئی کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک تہذیب غالب تہذیب کی حیثیت سے ہے, اس کا نام ہے مغربی تہذیب. اور اس میں پھر ہم نے مزید یہ سمجھا کہ مغربی تہذیب ہے کیا. یہ اصل میں بالکل شروع میں سائنس ٹیکنالوجی کا جو ہے تصادم ہو گیا مذہبی انسائیت سے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو تہذیب سے ڈیولپ ہوئی اس کے اندر مذہب دشمنی اور انکار خدا روح اور آخرت کا کے نظریات ہیں, یعنی مغربی تہذیب کے اندر. یہ ہم نے ابھی تک سمجھا ہے. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ یہ ترقی مغرب نے کیسے کی, اس کا ہم نے سمجھا کہ بڑا اچھا اتنا بڑا تھا کہ مسلم اسپین دنیا کو جگہ کر خود سے ہو گیا. اصل میں ان سارے علوم کی ابتدا تو مسلمانوں کے ذریعے ہوئی, لیکن پھر ہم خود جو ہے بچی کا شکار ہو گئے اور ہماری یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ برناتا بغداد اسپین کی یونیورسٹی میں وہاں کے آس پاس کے یورپی ممالک کے جو طلبا تھے انہوں نے آگے تعلیم حاصل کی, اور پھر وہ علم لے جا کے انہوں نے یورپ میں دو تحریکوں کا آغاز کیا. ایک کہلاتی ہے احیاء علوم رینائسنس, اور دوسری کہلاتی ہے کلیسا کی اصلاح یا مذہبی اصلاح کی تحریک, جسے ریفارمیشن کی تحریک ہے. ان دو تحریکوں نے یورپ میں بہت بڑا انقلاب کیا, وہ رونما کر لیا, اور وہاں پر جو توہمات پرستی تھی اور یہ جو اول دشمن ہے منتقی استبدادی مذہب پاپائیت تھا, اس کو لوگوں نے بالکل جو ہے اتار کے نہیں کیا, اور اس کی جگہ اول پرستی کو اختیار کیا گیا. ایک رینائسنس کہلاتا ہے, ایک ریفارمیشن کہلاتا ہے. ریفارمیشن یعنی اصلاح کلیسا, مذہب کی اصلاح کی کوشش کی گئی. لیکن چونکہ اس وقت پورے یورپ میں ہولڈ جو تھا وہ مذہبی قیادت کو تھا, کلیسا کو جو ہے بہت ہولڈ حاصل تھا, انہوں نے ان نوجوانوں کو سختی سے کچلا اور جو ہے یہاں تک جو ہے ان کے گھر جلا دیے گئے, قتل کر دیا گیا, انہیں ملک بدر کر دیا گیا, پابندی لگا دی کہ یہ علم اور حکمت کی بات نہیں ہوگی. یہ اعلان کر دیا گیا کہ عقل کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں, بس جو ہم کہہ رہے ہیں. اس طرح کی جو بات ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ دہلی سے زور پکڑ گئی, اور وجہ اس کی کہ ان کی دشمنی صرف عیسائیت تک رہتی, وہ ٹوٹل مذہب کے خلاف بھی ہوئی, اور بڑے بڑے سائنسدان اور فلسفیوں نے باقاعدہ جو ہے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, معاذ اللہ, اور کسی مذہب کو نہیں مانتے. گویا یہ تحریک جو ہے وہ اس طرح عبادت ہو رہی, اور یہ مذہب دشمنی آپ سے آپ جو ہے وہ اس مغربی فکر کے اندر آ رہی. اگر آپ باقاعدہ حوالوں سے دیکھنا چاہیں تو 13th اور 14th سینچری میں ابن رشد بہت بڑا جو ہے فلسفی گزرے, اور نہ صرف فلسفی سے بلکہ میتھمیٹیشین تھے, فزیسٹ تھے, اور جو ہے میڈیسن میں ان کی بہت جو ہے وہ خدمات تھی. کئی کتابیں فلسفے کے اوپر, ریاضی کے اوپر, فزکس کے اوپر اور میڈیسن کے اوپر انہوں نے لکھی. تو یہ 13th اور 14th صدی میں جو ہے تمام تصانیف کا جو ہے وہ اطالوی زبان, اٹلی کی جو زبان ہے, اٹالین لینگویج جو ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا. گویا یہ وہ علم کا خزانہ تھا جو مسلمانوں سے یورپ میں منتقل ہوا 13th-14th صدی عیسوی میں. پھر جو ہے وہ 15th صدی عیسوی میں اتنے رخ کی یہ تصانیف گئے اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں میں نصاب میں شامل کر دی. 16th صدی میں یورپ میں دو تحریکیں شروع ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا, بہت ساری ہیں. آپ جب نیٹ پر سرچ کریں گے ایوروس لکھیں گے تو بہت کچھ آ جائے گا. ابن رشد کو ایوروس کہتے ہیں, ویسے ابن رشد بھی لکھ کر سرچ کریں گے تو بہت کچھ آ جائے گا. 16th صدی میں یورپ میں دو تحریکیں جیسے بات ہوئی, ریفارمیشن کی تحریک, رینائسنس کی تحریکیں شروع ہوئیں. اس میں بہت بڑا نام ہے لوتھر کا, اس نے سب سے پہلے جو ہے اصلاح کلیسا کی مہم شروع کی, اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن مارٹن لوتھر جو ہے یہ نام بہت مشہور ہے. اور یہ ان کا احتجاج تھا क्योंकि इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेस्ट। चुनाची नया फिरका से साइकिल से लौटना हुआ जिसे हम प्रोटेस्टेंट फिरका कहते हैं, एहतजाजी फिरका प्रोटेस्टेंट। और उन्होंने ये बात बावर कराई कि असल अहमियत बाइबल की है, कलीसा की नहीं है, बल्कि हक और बातिल का जो मेयार है वो कलीसा नहीं है, वो क्या है, वो बाइबल है, किताब है। चुनाचे वो किताब की तरफ दिमाग लेकर आए और प्रोटेस्टेंट मजहब में ये जो पापाइयत और इसका पूरा वो चीले जातों का जो पूरा एक चेन बनी हुई थी वो बहुत हद तक डैमेज हुई, इसका बिल्कुल जोर टूट कर रह गए। इसी तरह फिर जो है जब ये तालीमात इतने लोग की आम हुई तो दोबारा लोगों का जहन जो है फलसफे की तरफ गया और वो एक फिक्री आज़ादी जो है यूरोप को हासिल हुई, वहाँ से 17वीं सेंचुरी जो है साइंस के आगाज की सदी चला। उसके बाद हमें मालूम है कि अहल साइंस और अहल फलसफा ने कलीसा के खिलाफ खिलाफ अकल अकायद को जो है उन पर एतराज़ करने शुरू कर दिए। जैसे सबसे पहले जो है वो जो नाम आते हैं कॉपरनिकस और गैलीलियो, ये दो साइंसदान थे और इन्होंने ये तहकीक करके बताया कि जमीन गोल है। अब ये उस वक्त की ईसाई तालीमात के खिलाफ था, चुनाचे सख्ती से कलीसा ने इसका इनकार किया और इन दोनों को भी काफिर करा दिया और इस बात को मानने वाले हर एक को काफिर करा दिया। तो यहाँ से मजहब और साइंस की जो है इस तरह दुश्मनी का आगाज हो गया बकायदा। गैलीलियो और कॉपरनिकस ये दो साइंसदान थे जिनसे फिर यह आगाज हुआ। कलीसा की अकल दुश्मनी का नतीजा ये निकला कि साइंस और मजहब में जंग शुरू हो गई। हुक्म और फलसफा ने मजहब को खैराबाद कह दिया और इस तरह यूरोप में ला मजहबियत का आगाज हो गया जो आज तक जारी। अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, क्योंकि इसके सचमंजर में वो इलाहाद इनकार खुदा है, तो एक ज़माना ये था कि वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन आजकल अब साइंसदान वहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे जैसे इल्म में तरक्की हो रही है, कायनात उन पर खुल रही है, इसलिए वो मजबूर हो रहे हैं कि जी ये सब कुछ धमाका नहीं है। और आपको पहले भी मैंने जिन साइंसदानों की बातें आपके सामने रखी थी, जैसे ग्रीन स्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो जो है एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इतनी बड़ी कायनात जो है तो ये बात मानने पर मजबूर करती है कि सब सुपर नेचुरल एजेंसी मर्जी में आए, ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता, कोई सुपर नेचुरल एजेंसी है जो ये सारा काम करे। तो अब सिर्फ बात ये है कि अल्लाह की जगह दूसरे नाम जो है वो रख दिए जाते हैं, कहीं मदर नेचर कह दिया, कहीं जो है वो कुदरत अल्लाह इस्तेमाल कर देते हैं, कुदरत का करिश्मा है, कहीं उन्होंने सुपर नेचुरल एजेंसी कर दिया। बहरहाल अब साइंस वहाँ पहुँच गई है कि इस सब को हादसा मानना या खुद ब खुद मानना यह मुमकिन नहीं रहा। तो अब ये आखिरी हलबा है कि किसी तरह इस्लाम को जो है वो टेररिज्म के कायम मुकाम कहकर लोगों को रोक दिया जाए कि पढ़े नहीं, वरना अगर मजीद जो है तालीम आगे बढ़ेगी तो अब खुदा तक जो है इंसान जो है वो आराम से पहुँच जाए। इसलिए आप देखते हैं यूरोप में दोबारा मजहब की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, वह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो लोग जो जो है मजहब के बिजारी का एहसान करते थे दोबारा अपनी ओरिजिनल किताबों की तरफ आ रही है, खसूस इस्लाम को जितना पढ़ा जा रहा है वो हम सबके सामने दे रहा। ये एक आपके सामने तारीख आ गई। और फिर हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो ये कि साइंस की तरफ तवज्जो हुई तो जो है बाज़ाहिर जो है वो मामूली चीज़ों के अंदर बड़े बड़े जो है तवानाई के खजाने लोगों को मिल गए। ये हवा है, पानी है, बाज़ाहिर तो उससे जो है कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हो गई, हवा का इस्तेमाल किया गया, फिर जो है बारूद बनाया गया और यहाँ तक कि इंसान ने बहुत बड़ी तरक्की कर दी। हमें मालूम है गाड़ियाँ आ गई, टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, रेफ्रिजरेटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये मीडिया में आपने देखा रेडियो टेलीविजन फिर मीडिया कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई। तो ये जब आप सफ़र देखते हैं 100-150 साल में एकदम से दुनिया इतनी तब्दील हो गई। तो अब इस पस मंजर के साथ जो है आगे हम पढ़ें वो है आलम इस्लाम पर मगरिब की सियासी और फिक्री जोरिश, सियासी हेडिंग है। जोरिश कहते हैं हमला, धावा बोलना, जलवार करना। तो ये आलम इस्लाम पर मगरिब की जोरिश जो है वो दो तरफा यहाँ बयान हो रही है। एक सियासी यानी फौजों के जरिए हुआ क्या था कि इन सारे वसाइल से जो कायनात के वसाइल हैं उन्हें डिस्कवर किया, उस पर यूरोप ने काबू पाया, उससे नई इजादें की और इस तरह एक बहुत बड़ी फौजी ताकत बन गई। और उसके बाद इस ताकत के साथ मशरकी ममालिक पर हमला आवर हुआ और गोया एक तो उनका फौजी कब्जा यहाँ पर आया और बाद में पीछे से उनकी वो फिक्र आई साइंस और टेक्नोलॉजी के पर्दे में, वो इल्हाद और खुदा बेजारी और जो है वो इनकार आखरत की फिक्र के साथ साथ मशरकी ममालिक में आई। अभी से पढ़ते हैं, फितरत की नौ तस्वीर शुदा कुवतों से मुतल्ला होकर मगरब जब मशरक पर हमला आवर हुआ तो देखते ही देखते एक सैलाब की माने पूरे कुदरत अर्जी पर चढ़ गया। ठीक है जनाब, बहुत बड़ी फौजी कुवत। और अगर आप तारीख में जाए तो यह असल में वर्ल्ड वॉर वन की बात है, 1914। और आप तो पता है दुनिया में कोई इंटरनेशनल इदारे नहीं थे जैसे यूएन वगैरह है, और दो बड़ी कुवतों में दुनिया तकसीम हो रही थी, एक तरफ जर्मनी और उसके साथ जो है वो जर्मनी जापान, और इस तरह उसमें से मुसलमान भी आते हैं, मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। दूसरी तरफ रशिया रूस जो उस वक्त की बहुत बड़ी ताकत था, वो बरतानिया फ्रांस ऑस्ट्रिया ये ममालिक थे जिनका गठजोड़ जोर हुआ। और बहुत सारे वजूहत बयान होती हैं कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों होगी। बहरहाल उनमें ये था कि आपस में एक तो ये क्योंकि नई नई कुवतें हासिल हुई थी और हर मुल्क एक बहुत बड़ी फौजी कुवत बनता जा रहा था, और खुफिया मुआहदे एक दूसरे से हो रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा मुल्क किसके साथ। और मुसलमानों की कुवत चूंकि जवाल की तरफ थी और एक बहुत बड़ी तीन कॉन्टिनेंट से फैली हुई बहुत बड़ी रियासत पर जो है मगरबी उभरती हुई कुवतों की निगाह थी, और यही वजह बनी कि मजबूरन मुसलमानों को भी इस जंग में कूदना पड़ा और जर्मन का साथ देना पड़ा, क्योंकि रशिया और खसूस ऑस्ट्रिया उसी तरह फ्रेंच और बरतानिया जो है वो पूरी तरह तैयार थे कि मुसलमान ममालिक पर साजिश हो जाए जैसे कि बाद में हो गए। तो बहरहाल ये बस मंजर है, और वर्ल्ड वॉर वन के साथ ही जो है मुसलमानों पर जो है ये बात लगाई गई कि ये यर्मन का साथ दिया और पूरी जो जो मुसलमान सल्तनत उस्मानिया है वो ऑक्यूपाइड कर दी गई कोशिश में, इस बात ठीक जाए। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही ऑक्यूपाइड होगी, बल्कि उसके दौरान ही होगी, 1914 से 1919 तक चली है, 24 तक उसके असरात चलते रहे हैं, तो उन्हें बहुत मशीन गेन वॉर जो है इन्हीं में थी और इसके अंदर अंदर ही ऑक्यूपेशन शुरू होता है। अच्छा जनाब, देख फितरत की नौ तस्कीर शुदा कुवतों से मुतल्ला होकर मगरब जब मशरक पर हमला आवर हुआ तो देखते ही देखते एक सैलाब की मानिंद पूरे कुदरत अर्जी पर छा गया और मशरकी अकवाम और इनकी अजीम हुकूमतें और सल्तनतें इस सैलाब में रेत के कच्चे गरंदे की तरह बहती चली गई। कोई भी इन कुवतों का मुकाबला नहीं कर सका, बड़े बड़े वेपन्स के साथ ये लोग आए थे। आज भी हमें पता है कि ये जो है इन्होंने अपनी एक ईच जो है वो बरकरार रखी है, एक ईच पर ये और जो चीज़ एथलीट हो जाती है वो फिर वो नीचे हमें दे देते हैं। जो असली का जो लेवल वन है वो इनके पास है, और जो ग्रेड थ्री ग्रेड फोर का असला होता है वो फिर वो मुसलमान ममालिक और दूसरे ममालिक को दे देते हैं, भेज देते हैं। तो यही उस वक्त भी था कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हमलावर हुए, कोई भी मुकाबला नहीं कर सका और जहाँ ये गए वहाँ फतूहत हासिल करते। इस सैलाब का वलीम शिकार क्योंकि मशरक करीब और मशरक वस्ता थे जहाँ मुसलमान आबाद थे, लिहाजा इसकी सख्त तरीन योरिश यानी यलवार इस्लाम और अहल इस्लाम पर ली, और चंद ही सालों के अंदर अंदर पूरा आलम इस्लाम यूरोप के जेर नगी हो गया। वर्ल्ड वॉर वन के आवाज में जब जब जो है वो जर्मनी को शिकस्त हुई उसके साथ ही मुसलमानों का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो था भी कि मुसलमानों ने साथ दिया था अपनी हदूद की हिफाजत के लिए, लेकिन जब जर्मन को शिकस्त हुई तो फिर जो है वो साथ ही ऑस्ट्रिया ने जो है वो बॉस्निया और हर्जेगोवीना इन पर कब्जा कर लिया, उसी तरह बरतानिया ने मिस्र को ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पर नए स्वीस जो है बहुत बड़ा जरिया थी आपने मालियाती लिहाज से इकोनॉमिकल जो है बहुत बड़ा जो है फायदा था, वो डायरी रस्तों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रास्ता था, तो उस वक्त से बरतानिया बैठी आज तक, तो मिस्र पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। इसी तरह ट्यूनिस अलजज़ायर के जो इलाके थे यहाँ पे फैल जाके ऊपर थे, और सराकस और लीबिया पर जो है वो अतालवी आ गए इटली के लोग, इस तरह पूरी इस्लामिक लैंड जो है ऑक्यूपाई होगी। फिर कुछ अर्से बाद जो है वो हमें पता है कि तजारत के बहाने जो है अंग्रेज़ों ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहाँ एक कंपनी शुरू की इंडिया में, और इंडिया के भी जो मशरकी एरिया है यानी बंगाल, वहां पर इन्होंने बड़े बड़े जो है जमीनें हासिल कर ली और बड़ी बड़ी कोठियां बनाई। शुरू में तजारत होती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता असला जमा किया, फिर फौजियां उतार दी और यहाँ पर जो है वो कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल अर्ली 19th सेंचुरी यानी 1816 से ये सारी कार्रवाई शुरू हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता 1830 में तो ऐलान कर दिया गया। एक जगह इसके भी हम थोड़े से मोटे मोटी बातें देख लें। हाँ जी, 1830 में बरतानिया ने अरबी और फारसी तालीम पर पाबंदी लगा ली। यानी पहले तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मुसलमान यहाँ इंडिया में भी कमजोर थे, तजारत के बहाने आए, असला लेकर आए, फौज लेकर आए और जो ऑक्यूपाई कर लिया लैंड, और हिंदुओं ने मदद की उनके लिए थे, चेंज ऑफ मास्टर्स थे, पहले मुसलमान हाकिम थे अब अंग्रेज हाकिम आ गया, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेजर फर्क किसे पड़ा? मुसलमानों। तो 1830 में बरतानिया ने अरबी फारसी में तालीम खत्म कर दी। 1838 में लॉर्ड मैकाले, उन्होंने बहुत मशहूर जुमला है कि हम ऐसी कौम चाहते हैं जो रंग के अहबार से हिंदुस्तानी हो लेकिन जहन और सोच के लिहाज से मगरबी हो। तो वो फिर एक पूरा निज़ाम तालीम यहाँ राइज किया गया। मुसलमानों का अपना निज़ाम था मदारिस का और वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का, लेकिन उन सबको ख़त्म करके अंग्रेजी निज़ाम तालीम को राइज किया गया। और फिर हमें पता है इवेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 1857 में जो है जंग आज़ादी मुसलमानों ने ही लड़ी। हालांकि आप देखेंगे जंग आज़ादी के अहबाब क्या थे, उसमें यह था कि अंग्रेज एक नया जादू लेकर आया था, बड़ी तादाद में मुसलमान फौजी भी शामिल थे, हिंदू फौज भी शामिल थी अंग्रेजी फौज में, और उसके ऊपर टैली लगी होती थी कारतूसों के ऊपर, और उस कारतूस को चलाने के लिए ज़रूरी था कि दांतों से उस टैली को चीरा जाए, फिर वो कारतूस चलता था। और ये बात फैला दी गई कि ये जो टैली है ये सुअर की है, चुनाचे मुसलमान फौजी भड़क उठे और जो है उन्होंने जो है इनकार कर दिया। 50 फौजी ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल हाथ लगाने से इनकार कर दिया, चुनाचे उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ, 10 साल की कैद कर दी गई। वो फौजी थे जाहिर है, अगले दिन वो जो है फरार हो गए जेल से और उन्होंने जो अंग्रेज अफसर हाथ लगा उसे कत्ल कर दिया। और ये भी पूरी इंडिया में जो है ये लहर इस तरह नहीं फैली। 3 शहर बड़े बड़े जो है न्यू दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, ये 3 इलाके थे जहाँ ज्यादा इस तरह की शोरश हुई, अंग्रेज अफसरान को जो है कत्ल किया गया, बहुत बड़ी तादाद में वो भी नहीं था। और यही फौजी 50-60 जो थे इन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया, कुछ जो है मुसलमान जो है और जो है बहादुर शाह जफर जिनकी उम्र उस वक्त 80 साल थी, उन्हें जो है हिंद का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। और ये कुछ ऐसे ही मामला रहा, लेकिन जाहिर अंग्रेज ने इस सब को जो है रिवर्स कर दिया, बहुत बड़ी फौजी कुवत उनके साथ थी, हिंदू साथ थे, फिर जो है वो जो है इस तरह ये सब क्रश हो गया। और जो है मुसलमान एक तरह के पहले भी उनसे हुकूमत की नहीं थी, लेकिन अब अंग्रेज के वबाल और गुस्से का जो है निशाना मुसलमान बने, लाखों मुसलमान कत्ल हो गए, 55,000 के करीब फिगर आती है, उनमा कराम जिन्हें फांसियाँ दे दी गई इस वजह के बाद, और जो है मुसलमानों पर जो है सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए। अंग्रेज ने अपनी पूरी नफरत का इजहार मुसलमानों से शुरू कर दिया। मुसलमानों ने भी जो है उसकी रिएक्शन में अंग्रेजों से शदीद नफरत जो है वो उसका इजहार किया, और यहाँ तक कि उनकी दरगाहों में जाना, उनकी मुलाजमतों से सते ये दे दिए। गोया एक तरह की जो है वो बिल्कुल होश मुसलमानों के जो है वो आप कहेंगे उड़ गए, और हर तरह का नॉन कोऑपरेशन और जो है पता तालुकी का तरीका जो है मुसलमानों ने अख्तियार कर, और आप देख सकते हैं इससे फ़ायदा किसने उठाया, हिंदुओं ने चापलूसी की, आगे बढ़ बढ़ कर जो है अंग्रेज हुकुमरानों की खिदमत बजा लाए और बड़े बड़े अहदों पर जो है जगह हिंदू आ गया, और मुसलमानों को शदीद किस्म की जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा। तालीम से वो महरूम हो गए, नौकरियों से वो महरूम हो गए, जायदादें उनकी जो है अंग्रेज़ों ने जो है जब्त कर ली, और जो है हर तरह के खानदानी और जो जीतने कराने के लोग थे उन पर जुल्म सितम जो है इंडिया में शुरू हो गया। ये जनाब मंजर है आलम इस्लाम पर मगरिब का ये किला यानी गलबा दो कोना था, यानी अस्करी और सियासी भी और जहनी और फिक्री। एक तो फौजी गलबा था, दूसरा वो जो फिक्र आ रही थी साइंस के साथ साथ, एक कार्य खुदा वाली फिक्र वो भी साथ साथ जो है आने शुरू हो। لیکن یورپ یہ اولین اور نمایاں ترین یورپ چونکہ سیاسی تھی، لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا. کیونکہ فوجیں آئی تھیں تو مسلمانوں نے شروع میں جو ہے ان سے مقابلہ کرا، اس میں بڑے بڑے نام ہمیں معلوم ہیں، حیدر علی میسور کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور شہید ہونا گوارا کیا، لیکن انگریز کے آگے ہتھیار جاننا جو ہے گوارا نہیں کیا. تو ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن یہ جو ہے وہ جو انگریزوں کی قوت تھی اور خصوصاً مسلمانوں کی غداری تھی، یہ جاتے نہیں سازش، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہو سکا اور بہرحال جو ہے انگریز کا تیار ہوتا گیا اور پورے ریجن پہ اس کا قبضہ ہو گیا. پکی کلو نظام انہوں نے بھی صدا بلند کی کہ ہر باطل نظام کو پھاڑ دو. یہ ساری کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ پہلا انگریزوں کا غلبہ جو تھا وہ عسکری تھا، فوجی تھا، تو جو ریئیکشن پہلا مسلمانوں کی طرف سے آیا وہ بھی کیا تھا؟ فوجی تھا، وہ بھی لڑائی کے ذریعے جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہوا کیا، ملت اسلامی کے سلف احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں مینڈیٹ، بعض علاقوں پر تو یورپ آ گئے، یورپی قوت ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے بس، بعض جگہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہم نے عارضی طور سے یہاں قبضہ کیا ہے، کچھ اسٹیبلائزیشن ہو جائے تو حکومت جو ہے تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں. جی ہاں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی دنوں تک یہ سلسلہ بارش کا چلتا رہے گا، تو توجہ ادھر رکھیے، یہ ہمیں ختم کرنا ہے، وقت کم ہے، ختم کیا کرنا ہے سمجھنا ہے. ابھی جس طرح آپ کو موقع مل جائے یہاں بیٹھنے کا شاید آئندہ نہ ملے، اتنا مصروف وقت ہے، تو ان تھوڑے سے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے، توجہ ادھر رکھیں. جب بات یہ ہوئی کہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تو یورپی براہ راست آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے بس، کہیں پر انہوں نے جو ہے ہمدردی کے ذریعے اور یہ کہا کہ عارضی طور سے ہم آئیں، لیکن بہرحال پورے اسلامک ورلڈ پر ان کا قبضہ ہو، کہیں مینڈیٹ کے تھرو، کہیں جو ہے وہ جابرانہ قبضے کے ذریعے. دوبارہ پڑھتا ہوں، ملت اسلامی کے سلف احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب یعنی مینڈیٹ و تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے، بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار. اس زمانے کے مسلمانوں میں شدید جو ہے یہ غم تھا کہ ہمیں جو ہے کاٹ دیا گیا، خلافت کا نظام گرم گرم کیا جا رہا ہے، مسلمان آپس میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس اندر کے غم نے کیا شکل اختیار کی؟ بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی، چکوں کی صورت اختیار کی، اور کس صورت میں نکلے یہ؟ اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بری یاد، اپنی عمر رفتہ یعنی گزری ہوئی عمر اور عظمت و سطوت یعنی عظمت اور شان و شوکت اور عظمت و سطوت گزشتہ کی بات یاد یعنی اسے دوبارہ حاصل کرنے کی شدید تمنا اور گردے کے یاد کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش، لوٹ پیچھے کی طرف گردے کے ایام کو بہت شدید خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیما بش شخصیت کا روپ دارا. سیما بش کہتے ہیں پارا بھری، جو بے قرار آدمی ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، مستقل کوششیں کی لوگوں نے کسی طرح مسلمانوں کی یہ شان و شوکت دوبارہ حاصل ہو جائے، یہ زوال کی گڑیاں تل جائیں، گردش دوبارہ سے مسلمانوں کی عظمت کی طرف گھومنے لگے. اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی، لیکن حقائق میں ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھا ہے اور مغرب کی سیاسی بالا دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی. کیا ہوا، یہ ساری کوششیں ہوئی لیکن حقیقت کیا سامنے آئی؟ روز بروز مغرب زور پکڑتا گیا اور مسلمان کمزور ہوتے رہے، ہر آنے والا دن مسلمانوں کی ذلت میں ان کی کمزوری میں اضافہ ہی کرتا رہا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایکاد شخصیات کا نام لیا گیا جیسے سید جمال الدین افغانی، یہ ایک بہت ہی متحرک شخصیت تھے. 13th century یعنی انہیں جو ہے ان کا ظہور ہوا افغانی تھے، لیکن نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ذہن دیا تھا، دینی علوم جو ہے وہ 17-18 سال کی عمر ہی میں پوری طرح جو ہے اس پر کمال حاصل کر لیا تھا اور اس کے علاوہ کئی زبانیں بولتے تھے. یعنی اردو، افغانی، فارسی، انگریزی اور فرینچ، یہ ان زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا. اس لیے یہ پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ مختلف ممالک میں گئے، مصر جا، ہندوستان تو آئی، افغانستان میں تھے، ایران گئے، فرانس گئے، انگلینڈ گئے، مصر گئے، اور ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی طرح اس کے اندر یہ جذبہ دوبارہ اٹھائیں، اپنی سطوت کا، اپنی شان کا، کہ کسی طرح مسلمان دوبارہ جماؤں، اور یہ پین اسلامزم کی ایک پوری روح انہوں نے مسلمانوں کے اندر دیکھی. آپ کو ایک چیز ہے کہ یہ جو ورلڈ وار ون ہوئی ہے اسی میں مسلمان آپس میں بھی لڑے، اور انگریزوں نے بڑے ہی شاطرانہ انداز سے عربوں کو اور ترکوں کو آپس میں لڑایا. امیر وہ شریف مکہ جو ہے ایک سردار تھے عربی، عرب کے سردار، حجاز کے علاقے پر جو ہے وہ کنٹرول تھا. جب یہ یورپی قوتیں جو ہے سلطنت عثمانیہ کے اوپر آئیں تو عثمانی جو خلفاء تھے انہوں نے جو ہے شریف مکہ سے کہا کہ انگریزوں کے خلاف ہمارے ساتھ تو لاکھوں جو ہے وہ مالی لحاظ سے بھی لاکھوں روپے دیے، ہتھیار بھی دیے، لیکن وہاں انگریزوں نے ان سے سازباز کر لی اور انہوں نے حجاز سے جو ہے ترکوں کو نکالوا دیا اور ترکوں کے خلاف جو ہے وہ شریک ہو گئے. تو اس طرح مسلمان آپس میں بھی بڑی جو ہے ان میں مخالفت ہوگی، خصوصاً ترکوں کے اندر عربوں عربیوں کے لیے شدید غم اور نفرت کے جو ہے جذبات پیدا ہو. اسی طرح عرب یہ عربوں کو یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سے خلافت کی تھی اور تاداری آئے اور جو ہے باسی خلافت ختم ہوگی، تو وہ عصبیتیں جو ہے جاگ اٹھی تھی. تو یہ جو شخصیت ہے سید جمال الدین افغانی، انہوں نے مختلف ریجن میں جا کے مسلمانوں کو دوبارہ آپس میں جوڑنے کی کوشش. اب ان کی کوششوں سے ہی 19th century نہیں بلکہ ارلی 20th century میں جو ہے دوبارہ ریوائول شروع ہوا. تو یہ اس کے بانی گہرانے جاتے ہیں، مسلمانوں نے دوبارہ جو تحریکیں شروع ہوئیں، کہیں جماعت اسلامی، کہیں افغان المسلمین، کہیں ایران میں جو ہے تحریکیں، انڈونیشیا میں تحریکیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سید جمال الدین افغانی جو ہے ان کے بانی ہیں ان تحریکوں کے. انہوں نے مسلمانوں میں جا جا کے یہ روح کی کہ اٹھو. جی ہاں بالکل، لیکن مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے نا، انہیں جوڑنے کا آغاز کس نے کیا کہ نہیں دوبارہ جڑو، دوبارہ ملو، یہ تمہارے دشمن آپس میں نہ لڑو. یہ ساری جو روح پھونکی یہ سید جمال الدین افغانی. کیا 13-14 ہے ان کی کوششیں، لیکن اس وقت نتیجہ کیا نکلا ان کی کوششوں کا؟ صفر، کوئی نتیجہ اس وقت نہیں. اس وقت تو مغربی قوتیں اوپر آتی رہی، مسلمان جو ہے روز بروز زوال کا شکار ہوتے ہیں. تو جس وقت وہ کوششیں کر رہے تھے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن بہرحال انہی کوششوں نے پھر آگے چل کر مسلمانوں میں بہرحال یہ فکر تو پیدا ہو گئی کہ ہمیں جڑنا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے اور ان بڑی قوتوں کے خلاف جو ہے سرگرم عمل ہونا چاہیے. اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے، دنیا اسلام نے اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تصدیق، یعنی ذہنی اور فکری تصدیق کا سلسلہ شروع کر دیا. فکر کیا تھی مغرب کی؟ کیا الحاق مادہ پرستی. اصل اہمیت کس کی ہے؟ مادے کی، پیسے کی، اسباب کی. اور پس منظر میں کیا چلا گیا؟ خدا، آخرت اور روح. وہ کہتے تھے یہ تو بیکار ہے، یہ مومن ہے، اس کی کوئی حیثیت. اصل ایسی حیثیت جو ہے مادی دنیا کی ہے. چنانچہ مادیت تراویت کرنا شروع ہوگی مسلمانوں میں. اور فکر میں کیونکہ دو طرح کی تھی، ایک فکر آئی تھی خالص فلسفے میں، تو اس میں تو مسلمانوں نے مقابلہ کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ہمارے عقائد سے تصادم ہے. لیکن ایک فکر آئی سائنس کے ذریعے، اب وہ سائنس کے اندر کی بھی، اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اس نے جڑیں پکڑی اور اسے جو ہے اس طرح پہچانا نہیں جا سکا، کیونکہ مسلمان جگر خوردہ تھے اور یورپین قوتوں سے معروف تھے. چنانچہ جو چیز سائنس کے ذریعے آئی وہ بالکل صلاحیت کر گئی اندر. اسی بات کو آگے جو ہے مزید کہا جا رہا ہے. نگاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی سیدھا ہو چکی تھی، یعنی چکا چون تھی، اور جب آنکھیں جگہ چوند ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. ایک تیز روشنی آنکھوں میں پڑ رہی ہو تو پھر نظر نہیں آتا آگے کیا صحیح ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا غلط ہے. تو یورپ کی طاقت سے، ان کی مادی ترقی سے مسلمان معروف تھے. फिर जिंदा कौमों में हमेशा कुछ बुनियादी इंसानी औसाफ लाजमन मौजूद होते ही हैं, कुछ इनकी बिना पर मरूदियत में इजाफा हुआ। नतीजतन एक मरूफ और शिकन खोदा जहनीत के साथ मुसलमानाने आलम के सवाद आजम यानी उसकी अक्सरियत उनकी जो है बड़ी तादाद ने मगरबी अफकार और नजरियात को चूं का चूं कबूल करना और इन्हें से जान बनाना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि उस फिक्र का मुकाबला करते, कहते नहीं यहाँ यहाँ तुम में टेढ़ है, ये गलती कर रहे हो, कुछ नहीं, क्योंकि मरूफ थे, शिकस्त खुर्दा थे, चुनाते क्यों की तू नहीं। उस वक्त बात कही जाने लगी, ये कैसे मुसलमान है, ये तो सरकारी नौकरियाँ 9 बजे शुरू होती हैं और ये 11 बजे आते हैं, जो हमारे सरकारी इदारों का, जबकि अंग्रेज का क्या हाल था। जैसे यहाँ कहा गया कि उभरती हुई कौमें होती हैं उनके अंदर बुनियादी खराफियात होती हैं, तो अंग्रेजों का नजर आया ये तो वक्त के पाबंद है, 9 बजे ऑफिस टाइमिंग है तो 9:45 बजे पहुँचते हैं। इसी तरह नजर आया कि वादे के पाबंद है, जो कह देते हैं वो वादा पूरा करते हैं, रिश्वत नहीं लेते, इतनी बड़ी बड़ी रकमें भी पेश की जाए अंग्रेज अफसर रिश्वत नहीं लेता। तो ये सारी जो बुनियादी इखलाकी उनके अंदर खूबियाँ थी उससे और मुतासर हो गए और जो है चूँ कर चूँ उनके हकायक को लेना शुरू कर दिया, उनकी फिक्र को अख्तियार करना शुरू कर दिया। यानी जान का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। खालिक फलसफा और इंसानियात के मैदान में तो चूंकि खुद मस्जिद में बेशुमार मकासिद फिक्र मौजूद थे, लिहाजा इनके बारे में तो फिर भी किसी कदर वीर वाल और रदो कदा या कम अज कम तहजीब इंतखाब का मामला किया गया। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी था और रियलिज्म भी था और फ्रॉइडिज्म भी था, खुद उनमें भी इख्तलाफ था। कोई कह रहा था ये इंसान जो है वो उसके सारे आमाल जो है वो उसके पेट की वजह से, जैसे मार्क्स कहता था कि इंसान जो है वो एक इकोनॉमिकल एनिमल है और जो है डार्विन जो था वो कहता था नहीं बायोलॉजिकल एनिमल है और जो है वो महज इंसान है। इसी तरह फ्रॉइड कहता था नहीं इंसान के तमाम मौलिकात की वजह क्या है, सेक्स है। इसी तरह डॉर्टाइन कहता था नहीं इंसान के अंदर अर्ज टू डोमिनेट है और उसे फुलफिल करने के लिए सारे काम। तो बहरहाल क्योंकि मगरब में खुद फलसफे में इख्तलाफ था तो फलसफे को तो हमने उस तरह नहीं लिया, उनके फिलासफर्स तो इतना काम यहाँ पर नहीं कर सके, लेकिन साइंस जो है उसके जरिए जो इलाज आया और साइंस के जरिए जो सबसे बड़ा शेख आया वो मादा परस्ती का शेख था। भरोसा अल्लाह से उठ गया, अल्बाब पर आ गया, जब तक जेब में पैसे नहीं आए उस वक्त तक मुतमईन, पैसे खत्म हुए तो परेशानी, तकलीफ हुई बीमारी आई तो पहले मुसलमान क्या होना चाहिए तसव्वुर फौरन अल्लाह की तरफ, लेकिन अब क्या हो गया महंगी से महंगी दवाई अच्छे से अच्छे डॉक्टर उसकी फिक्र पहले होती। तो ये जो मादा परस्ती का सैलाब आया वो इस तरह ऐसा ऐसा मुसलमानों में आ गया। जैसे कहा जा रहा है कि फलसफे के बारे में किसी कदर तीन वाल क्या मतलब होता है, कुछ कहा कुछ कहलवाया गया, ठीक है कुछ उनकी बात सुनी कुछ अपनी कही, इसी तरह रद्दो कदा किसी को रद्द किया गया कुछ को कबूल किया गया और कम अज कम तरजीह और इंतखाब कुछ बातों को कहा गया भाई ये ठीक है ये काबिल तरजीह है, कुछ चीज़ों को चुन लिया गया कुछ को रिजेक्ट किया गया, ये मामला हुआ फलसफे के साथ। लेकिन साइंस क्योंकि बिल्कुल हतमी और कतई थी, साइंस फाइनल थी और एब्सोल्यूट थी, उसके बारे में कोई शक व शुबा उस जमाने में नहीं था। ये तो क्या न्यूटोनियन साइंस के बाद जो है वो मामला जो है वो बदला है और जो है वो मामला बनना कहा जाता था कि मादा एब्सोल्यूट है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये आम साइंस बयान कर रही थी कि मादा जो है हतमी है मुस्तकिल है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, तो या वो बस ट्रांसफर हो जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। लेकिन आइंस्टाइन एरा जब आया तो उसने कहा गया नहीं मादा तो है ही कुछ नहीं, ये तो असल चीज़ तो एनर्जी है और एनर्जी की कंडेंस फॉर्म है ये मादा। लेकिन जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने में साइंस एब्सोल्यूट था, उसकी हर बात को समझा जाता था कि ये अनमिस्टेकेबल है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही है ये बात है। बाद में फिर लोग आए उन्होंने ये तफरीक की नहीं, साइंटिफिक टेक्स्ट अलग है साइंटिफिक थ्योरीज अलग है, साइंटिफिक थ्योरी तो एक आदमी का ख्याल है और वो गलत भी हो सकता है और उसने साबित किया बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज गलत साबित हो, साइंटिफिक फैक्ट्स अलग है जो जो मुस्तहकम है और जिनसे इस्लाम वैसे भी जो है वो इस्लाम बिल्कुल जो है उसके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। जाहिर है इसी बात को कहा गया था अल्लामा इकबाल के बाद काबिल स्टूडेंट थे डॉक्टर रफी सिंह, उन्होंने कहा था दिस यूनिवर्स इज द वर्क ऑफ गॉड एंड दिस कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू। ये कायनात अल्लाह का काम है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इन दोनों में कोई जो है कॉन्ट्राडिक्शन कोई तसादम नहीं होता। अब बात बिल्कुल सही है, आज की साइंस प्रूफ करिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक, फारूक जिया तीनों शान के चैलेंज करते हैं कि एक चीज ले आओ ऐसी जो साइंस से हो और कुरान उसके खिलाफ हो, या कुरान और साइंस से एक तसादम ले आओ यहाँ पर। तो ये तीन शान के आज हम खड़े हो रहे हैं ना, उस जमाने में ऐसा नहीं था। अभी साइंस शुरू हुई थी, मुसलमानों की मालूम जो है वो उसके मुताबिक उतनी नहीं थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन साइंस रुके बिल्कुल हतमी और कतई थी और इसके नतज बिल्कुल महसूस और मशहूर। मशहूर किसे कहते हैं? जो चीज मौजूद हो उसके नतज नजर आ रहे थे और उन्हें आदमी अपने हवास से महसूस कर रहा था कि ये इसी तरह। और इस मैदान में क्यों जरा की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी, लिहाजा इसका इस्तकबाल बिल्कुल वही आसमानी की तरह हुआ और इसके नतीजे में गैर शौरी तौर पर मुलहिदाना नुक्ते नजर और मादा परस्ताना तर्ज फिक्र रफ्ता रफ्ता आलम इस्लाम के तमाम सोचने समझने वाले लोगों के जहनों में सराहियत करता चला गया। क्या बात बताई गई? साइंस के साथ जो खुदा दुश्मनी दीन बेदारी आई वो उसका मुकाबला मुसलमान नहीं कर सकते। साइंसी चीजों को लेते गए और उसके साथ साथ जो है इलाज भी, अब मादे से मोहब्बत, मादे पर भरोसा जिसे मादा परस्ती कहते हैं वो भी सराहियत कर गई मुसलमानों से, खसूसा उनके सोचने समझने वाले जनों से। हमने ये समझा है कि माशरा जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर एक ब्रेन होता है, ब्रेन ट्रस्ट जो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा हो, दिमाग कितना होगा आपको पता है, बहुत छोटा सा हिस्सा है जिस्म का और दो मन के जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, वो आधा किलो भी नहीं होगा दिमाग का वजन। तो इसी तरह माशरे में होता है, इलीट क्लास होती है जो पूरे माशरे को कंट्रोल करती है। तो ये इलीट क्लास किससे मुतासिर हुई? इस साइंस और टेक्नोलॉजी और उनके जहनों में सराहियत कर गई है, उसके साथ इलाज और मादा परस्ती भी उनके जहन। इसलिए आज भी मुसलमानों को ब्रान आपको मिलेंगे वो दीन को बेस बनाकर नहीं सोचते, वो अभी भी मादा परस्ती उनकी सोच है, उसी के लिहाज से करते हमारी तकदीरों के वो करते। तो ये इस तरह इसका आगाज इस तरह हुआ, ये मजमून इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह ये बिगाड़ हमारी तहजीबों में आया और इसका नतीजा क्या हुआ। और खुदा के बजाय कायनात, रूह के बजाय मादे और हयात उखरवी के बजाय हयात दुनियावी की अहमियत पूरी उम्मत मुस्लिमा हत्ता के इसके खासे दीनदार और मजहबी मिजाज के लोगों के नज़दीक भी मुसलम होती चली। तो ये वजूहत बन गई साइंसी और टेक्नोलॉजी तरक्की, वो फिर ना सिर्फ आम मुसलमानों बल्कि दीनी मजहबी तबकात में भी आहिस्ता आहिस्ता सराहियत है। आज भी एक दीनदार घराने में कोई मसला आता है तो निगाह फौरन कहाँ जाती है? बजाय खुदा के अहबाब से, फलाना चौधरी साहब दोस्त है, फलाना दोस्त पे कर्ज दे दूँ, फलाना डॉक्टर ज्यादा नहीं है उससे ताल्लुकात है, तो हमारा भी जो है वो जो मामला है। हालांकि वो सारी चीज़ें भी इख्तियार करनी है लेकिन वो अहबाब है, असल भरोसा किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। लेकिन आप जब मजहबी रहनुमाओं को भी करीब से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कभी उनके अंदर भी है, ये मादा परस्ती उनके अंदर भी सराहियत कर गई है, ये यहाँ बताया गया है। अब आगे अच्छी हेडिंग है साइंटिफिक फैक्ट आज तक एब्सोल्यूट है। साइंस दो तरह की है, एक थ्योरी है एक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट तो एब्सोल्यूट है ना, साइंस ने आप बता दिया जमीन गोल है, अब आप उसे चपटी तो नहीं मान सकते, अब गोल है तो गोल है, वो ग्रेविटी एक फोर्स है जो जमीन के अंदर घटी हुई है। तो ये तजर्बात से जो चीज़ें साइंस है क्या, साइंस जो है मुशाहदे का नाम है, कायनात का मुशाहदा किया जाता है फिर उन पर तजर्बात किए जाते हैं और रिजल्ट को कन्फर्म किया जाता है, तो वो जब कन्फर्म हो जाता है तो वो साइंटिफिक फैक्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वो थ्योरीज हैं जब तक उनसे तजर्बात करके उन्हें जो है कंफर्म ना कर लिया गया वो फैक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये जमीन की गति से सफल हर चीज जमीन के ऊपर क्यों है? जमीन तो गोल है, जो चीजें नीचे वो नीचे गिर जानी चाहिए तला में, लेकिन नहीं, वो जमीन के साथ दिखती है। जमीन की एक कशिश है और ये हर चीज के अंदर होती है, हर माता जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कशिश सफल है, ग्रेविटी कहलाती है, जमीन की भी है। उस ग्रेविटी को तोड़ कर फिर आप तला में जाते हैं, और अगर उसे नहीं तोड़ पाएंगे तो आप उससे निकल ही नहीं सकते बाहर। मुलहिद कहते हैं इल्हाद से निकला है, लहज कहते हैं टेढ़ को, टेढ़ापन, सीधा चलना था मामला उसमें टेढ़ा हो जाना। तो टेढ़ापन क्या है? इंसानी फितरत खुदा को तस्दीक करती है। और मुलहिदाना अकीदा क्या है? कि वो चीज से उन्होंने टेढ़ निकाली है, वो खुदा का इंकार करती है। तो ये इल्हाद चला है। क्या डहरिया भी इंकार खुदा का नाम है, डहरियत। आगे पढ़े जनाब, बहुत सारे सफा आ गए हड्डिया पे, दो तीन तीन सफे बने जी। इससे कई इनका सवाल ये कि क्या मादियत की अहमियत नहीं है? यही एक इनडायरेक्टली यही है ना, यूरोप ने जो तरक्की कर ली वो अलू में दुनियावी पे गौर देखिए। एक सवाल यह है कि मुसलमानों ने हमेशा आप लोगों के हाथों शिकस्त का, ये तो फैक्ट है। और जहाँ पर भी आप देख लेंगे किसी बातें को पता हासिल हुई है तो अपनों की गद्दारी की वजह से हुई। अफगानिस्तान में शुमाली इतिहाद अमरीका का साथ नहीं देता, पाकिस्तान अमरीका के लिए जो है वो इंटेलिजेंस और सब तरह की अपनी ज़मीनी सपोर्ट नहीं देता, बहुत मुश्किल था। सैयद अहमद शहीद की तहरीक को जो है उनके अपने जो लोग थे सरहद के वो बगावत नहीं करते तो नहीं हो सकता था। ये तो है फैक्ट, लेकिन बात ये कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से हो रही है, इज़्ज़त से हो रही है, जो आपका मसला है ना। एक होता है अल्लाह का इज़्ज़त, एक होता है अल्लाह की रजा। तो ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता जब तक कि अल्लाह की इजाज़त ना हो। लेकिन इजाज़त से ये मुराद नहीं है कि अल्लाह की रजा भी यही थी, अल्लाह की रजा तो ये नहीं है। लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर बातिल गालिब नहीं आ सकते थे, मुसलमानों को गस्पाई नहीं हो सकती थी। लेकिन ये जो पछताई हुई है इस पर अल्लाह खुश नहीं है, अल्लाह की रजा नहीं है, यह हमारे गुनाहों का कुफारा, कुफारा कहने या उसका नतीजा है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमने तो 30 साल के अंदर अंदर दीनी तालीमात को तकरीबन छोड़ दिया था, और वो खिलाफत राशिदा के बाद ही बादशाहत का आगाज हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान भी बादशाहत के रंग में रंग गए, मुसलमान अवाम भी वही वही काम करती रही जो आजकल अवाम कर रही है। अमरीकी अवाम क्या कर रही है? उसे मजे चाहिए, मौज मस्ती, मनचाही जिंदगी। मुसलमानों को भी जब अरूज हासिल हुआ, पैसा आया, दौलत आई, तो हमने भी यही काम किया, गाना, मौज मस्ती, दीन को इस तरफ छोड़ दिया, यही करें। असल में वो उल्मा में भी इसलिए है ना, क्योंकि हमने दीन को बंद कर दिया, इश्तेहार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और आगे सोचना समझना रोक दिया बहनों। खैर जनाब, अब ब्रेक कर लेते हैं, चाय पी लीजिए, फिर आगे अब हम पढ़ेंगे कि फिक्री लिहाज से जो है वो क्या मुदाफियत का तरीका इख्तियार किया। ये अगला भी नहीं
है, तीन बातें क्या की उन्होंने?
तीन बातें थी, क्या की?